نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الفضل الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما مقصد ہمارا ذکر ہی ہے جمع ہونے کا اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ کہنے کا نہ ہوتا ہے نہ موڈ ہوتا ہے بات کرنے کے لیے ظاہر ہے کل رات ایک سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے آج بھی پھر اندر ہم لوگ جمع ہیں تو بالکل کوئی ایسی بات ذہن میں نہیں تھی جو میں کچھ عرض کرتا آپ سے سوچ بھی رہا تھا کچھ طبیعت بھی ایسی تھی تھکان تھی بہت لیکن اللہ کرم فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی بات پھر ذہن میں نماز کے دوران یا چلتے کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں تو بات میرے اپنے لیے تو بہت مفید ہوتی ہے الحمدللہ نافع ہوتی ہے پھر خیال کرتا ہوں چلو بول لیتے ہیں پھر کوئی بات کر ہی لیتے ہیں اور الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ذہن میں باتیں انسان کی آتی ہیں ایسے لوگ اللہ کے فضل سے یہ باتیں سنتے ہیں اور عمل کر رہے ہیں الحمدللہ اور خوب درجات بلند ہو رہے ہیں ان کے اپنے منزل کی طرف ان باتوں کو سن سن کر عمل کر کے الحمدللہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں جنت کی مقامات حاصل کر رہے ہیں لوگ. آج جو موضوع گفتگو ہے ہوتی عجیب باتیں ہماری آپ کو پتہ ہی ہے یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو عبادت کا معیار ہے وہ ایک ہے ماننا پڑے گا جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اچھی کوئی عمل بھی نیک کرتے ہیں عبادت کی شکل میں تو اس کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے اسی بات پہ آج گفتگو کر رہا ہوں آپ سے اور ہر ایک کے ذہن میں ہوتی ہے بات کیا چھوٹا عمل کرے آدمی یا بڑا عمل کرے وہ کیا ہوتا ہے پس پردہ کیا ہے اس کے بہائنڈ کیا ہوتا ہے ثواب ہے نا مقصد بالکل کوئی عمل بھی ایسا ہمارا نہیں ہوگا جس کے پیچھے ثواب نہیں ہوگا اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یار یہ کام کرو اس میں بڑا ثواب ہے کہتے ہیں یار یہ کر لو تو بہت ثواب ہوگا تو وہ کیا ثواب ہلاتا ہے ہمیں ثواب ایک ایسی چیز ہے انسان کو آگے ہلاتا ہے عمل کی طرف. اب دیکھیں رات کا وقت ہے لوگ سو رہے ہیں آدمی بستر سے جمپ مارتا ہے یا عورت جمپ مارتی ہے سیدھا جاتی ہے پانی جیسے تیسے وضو کرتے ہیں سخت سردی ہیں آ کے چلو بھائی کوئی فرض تو نہیں ہے تہجد ہی نیت کر لیتا آدمی کتنا مشکل کام ہے سوچے نہ کوئی فرض ہے نہ کچھ ہے اور تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے آدمی اس کے پیچھے کیا چیز ہے خوشخبری آئی ہے اس کی کہ جو لوگ مرد اور عورتیں اس تہجد کی نماز کو ادا کریں گے تو جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے بالا خانے ہوتے ہیں جو محل سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں ایسے بالا خانے ہوں گے کہ جن کا اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آئے گا کیا ریفلیکشن ہوگا اس کا اندازہ لگائیں کسی محل کی تعریف ایسے نہیں سنی یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے محل ہوں گے کن کو ملیں گے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. بس ذہن میں آئے یار یہ تو بڑا سوال ہے, بس اس نے قربانی دی اور کھڑا ہو گیا. یہ مطلب ہو نا کھینچ لیے. اب جناب چلے نماز کے لیے تو بھنگ دوڑ کرتے ہیں, چلو چلو فجر کی نماز پڑھتے ہیں. یہاں فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے کیا بات ہے, ثواب ہوگا. فجر ہوگی وہ چلو اپنے اپنے گھر جاؤ سو آرام کرو. نہیں پھر ٹک گئے وہاں پہ, نہیں یہاں بیٹھ جائیں, کیونکہ اشراق کا بڑا ثواب ہے. جو آدمی دو رکعت چار رکعت پڑھ لیتا ہے, ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بتائیں گے. نیند آ رہی ہے یار, مجھ جو ذوق رکھتے ہیں لوگ تو شوق ثواب کمانے کا, وہ چلو یار بیٹھ ہی جاتے بیٹھ کے. چلو ویسے کیا بیٹھنا یار, چلو ذکر ہی کر لیتے ہیں, ایک اور ثواب نہیں ہے. کیوں وہ کر رہے ہو ذکر یار, بڑا ثواب ہے. گو کہ کوئی نماز پڑھ لیں آپ, نفل نفل کی بات کر, اشراق پڑھ لی اس کے پیچھے کیا ہے ثواب کھینچ لیا, چاشت پڑھ لی ثواب, زوال پڑھ لی ثواب. کوئی آدمی بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہے, تم کیوں کر رہے ہو یار, تم معلوم نہیں اس کے ہر لفظ میں ایک ثواب اللہ پاک نے دس نیکیاں لکھی ہیں. جواب یہ آئے گا نا, اب آپ یہاں آ گئے سب گھر بار چھوڑ کے. آپ کے گھر کے نزدیک کوئی مسجد نہیں تھی, یہی دارالتقویٰ تھی. اور بھی مسجد ہیں جن جن گھروں سے آپ آئے, میں بھی دو تین مسجدیں چھوڑ کے یا بھاگ کے ہوں, آتے آتے ایک دو منٹ اوپر ہو جاتا ہے آدمی کا, میرا تو ہو ہی جاتا ہے سست آدمی. تو بھائی کیا بات, کیوں آیا حاجی صاحب, پتنی کہاں سے ہیں, کون سی بلیک بن روڈ ہے, کیا روڈ ہے, یہاں بیٹھے ہیں اس مسجد میں دارالتقویٰ میں جو ایک کونے کے اندر ہے. کتنے لوگ ہیں ماشاء اللہ, بھری پڑی ہے مسجد, سفید ہوئی ہے اس وقت. کیوں آئے ہو بھائی؟ جی ذکر کا بڑا ثواب ہے. کیا ثواب ہے جی؟ کلمات جو پڑھیں گے تو سبحان اللہ وبے ہم دے, ایک دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ وبے ہم دے, سو دفعہ جو پڑھ لیتے ہیں الحمد للہ, روز قیامت میں ثواب. کیا ثواب ہوگا بھائی؟ کیا کیوں آئے ہو؟ بڑا ثواب ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے جو سبحان اللہ وبے ہم دے سو دفعہ صبح پڑھ لے, سو دفعہ شام کو پڑھ لے, تو آخرت میں سب سے زیادہ اس عمل کا ثواب اس کو ملے گا. شوق پیدا ہو گیا بھائی ذکر کیوں کر؟ ذکر تو بھائی یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہمارے جو آبا اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام, انہوں نے جنت سے اوپر سے معراج کی شب نبی پاک سے آخر زمان نبی کو بلا کے کہتے دراؤ بھائی ایک بات سن لو, دیکھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے خانہ کعبہ کے ساتھ, اوپر جو بیت المامون ہے نبی پاک سے گئے ملنے کے لیے, تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو تمہاری امت جو ہے بڑی اچھی امت ہے, ان کو یہ بتاؤ کیا کہ تمہارے جو عمل کی کھیتی ہے وہ اوپر ہے زمین, نیچے تم کرو گے درخت اوپر لگیں گے. وہ کیسے کہتے؟ بس ان کو بتاؤ یہ کلمات پڑھتے رہو ذکر کرتے رہو, اور یہاں تمہیں نظر نہیں آیا کچھ, وہاں کام شروع ہو جائے گا, تمہارا محل بن رہے ہیں, درخت لگ رہے ہیں, بلڈنگیں بن رہی ہیں, روڈز بن رہے ہیں. اب یہ دو کتنے بڑے اولس نبی ہیں ذکر کی بات کر رہے ہیں, تو پھر یہی چیز تو جو آپ سب کو اللہ نے ذاکر بنا دیا, کیا اس کے پیچھے ہے؟ کیا ہے آج کے لانچ میں کوئی ثواب نہیں ذکر کا, آئے گا یہاں پہ کوئی بھی نہیں, پھر کوئی ثواب نہیں تحجد کو, مرضی پڑھو نہ پڑھو, بہت کم لوگ ہوں کون اٹھتے ہیں بھائی, اٹھے گا؟ ایک سنت نبی پاک سسم کی کیوں کرتے ہیں؟ بڑا ثواب ہے. کیا ثواب ہے؟ سو شہیدوں کا ثواب ہے اگر جی ہم مان لیں, ایسے کر لیں, مسواک کر لیں, سرما لگا لیں, دیکھیں بیٹھ کے پانی پی لیں, کھانا نیچے بیٹھ کے کھا لیں, اسی حیت میں بیٹھ جائیں, اکڑوں میں بیٹھ جائیں, پانی تین گھنٹ میں پی لیں, دعا پڑھ لیں, کھانے کے بعد دعا پڑھ لیں, پہلے ہاتھ دھوئیں تو پہنچے نہ, بعد میں ہاتھ دھوئے تو پہنچ لی, یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ ہر چیز پہ کرنے کا ثواب کیا ہے, ہے یا نہیں؟ یقین آ رہا ہے؟ پھر کرنا چاہیے نہیں, کیوں کہ ثواب ہے. تو ثواب کے پیچھے چلتے ہیں ہم لوگ, ہے نا. چلو آج میں آپ کو جو ذہن میں میری بات ہے میں بتاتا ہوں, بتاؤں آج آپ کو ایک ایسا ثواب نہ بتاؤں, لاجواب ثواب, بہت ثواب کماتے ہیں آپ. آج ایک میرا ثواب بھی سن لینا آپ کو ثواب. کیا ثواب اس کا؟ پہلے اس کی ہلکا سا تعارف آپ سے کرا تھا کہ اس کی کیا اس عمل کی کیا मंजिल है और क्या सवाब मिलता है उससे, ये सब सुन लेना अपने सवाब। हकीकत यह है कि वो सवाब इन सब पे चढ़ जाता है। बताऊंगा वो अमल आपको, कौन दावत करेगा उसको मिलाए, पता है जाएगा, मुझे बता रहे हैं आप कितना बड़ा अमल, इतना बड़ा अमल है कि इन सबसे गालिब आ जाएगा अमल। और उस अमल की शान यह है कि डायरेक्ट जन्नत उसी वक्त, खड़क ठीक ठीक ठाक जन्नत उसी वक्त, बड़ी इज्जत के साथ। और इस हालत को बता रहा हूं कि सारी जिंदगी उस शख्स ने कभी माथा ही ना टेको, कभी कोई नेक अमल ही ना किया हो, उसको कोई नेकी का पता ही ना हो, गुनाहों के गुबार चढ़ रहे हो, लेकिन अगर ये अमल कर लेता है डायरेक्ट जन्नत। सुनना है आपने जरूर करेंगे, फिर पक्का वादा, दावत कौन कौन करेगा। देखें कितना जरूरत साहब को मैं बता रहा हूं कि ऐसा आदमी, हमने तो फिर भी कुछ टूटे फूटा, ऐसा आदमी जिसने जिंदगी में भी देखा है वो नेकी क्या चीज पता ही ना उसको, अल्लाह उससे वो अमल करा देता है, थक जन्नत खड़क, ना कोई सजदा, ना कोई नमाज, ना कोई शराख, ना कोई फर्ज, ना कोई कुरान की तलावत, ना कोई तलाबी, ना कोई रमजान, ना कोई रोजा, किधर गया, क्या अमल होगा, करना चाहिए भाई वो अमल। चले अब हदीस की तरफ आते हैं, अब सुनेंगे तो गप्पे मारे, अब हदीस की तरफ आते हैं। तिर्मिज़ी की सही सनद की हदीस सुनाता हूं, और रावी कौन है, बड़े प्यारे साहबी आशिक रसूल, मुस्तनद आशिक रसूल, मेरे दादा इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक के दादा हैं, बड़े प्यारे फर्जंद थे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, उन्हीं के जानू पे आपने जान दी थी, हजरत उमर उन्हीं के जानू पर थे, मेरे उमर रदी अल्लाह, और इश्क ऐसा नबी पाक ने उसकी इंतहा दर्जे का इश्क, आशिक माने आशिक कहते थे, आशिक सुन्नत रसूल, इसलिए उनको आशिक कहा जाता है, झूठे मूठे आशिक नहीं थे, साल में जो एक आशिक बनते ना वो वाले नहीं थे, बल्कि क्या थे, सुन्नत रसूल के आशिक, साहबा मानते थे, साहबा का कि जैसा आशिक ने देखा सुन्नतों। तो मेरा ख्याल ये फारूक खानदान में चले आ रहा है, पीछे से चला रही है इश्क, इश्क सुन्नतों का। तो ये देखें आप, ये कमाल इश्क था। अब सुने हदीस कैसे प्यारे तरीके से बता रहे हो, बड़ा ही लुत्फ आया। कहते हैं अब रिवायत सुनाते हैं हदीस, संत किसकी है, तिर्मिज़ी की सही संत से हदीस है। कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बस मेरी एक आदत थी, आप जी बता रहे हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बहुत सुनता था, बस मेरी आदत थी मैं आपकी बातें सुनता था। अजीब अंदाज है हदीस का, आप देखें मैं आपकी बातें सुनता था, अपनी किस तरीके सुनते हुए जो इस हदीस में दाखिल किया है, क्या अंदाज होगा उनको सुनने का, क्या कैफियत होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सभी साहबा सुनते थे, देखो कई अंदाज के, मैं आदत थी कि मैं नबी पर बातें बहुत सुनता था। तो फिर हदीस बताई कि मैंने ये नोट किया था, बड़े करीब साहबी थे, कहते मैंने ये नोट किया था कि आप सलसन की आदत मुबारक थी कि कभी किसी बात को एक दफा कह दिया या ज्यादा दो दफा कह दिया, उससे ज्यादा नहीं कहते थे। सुना ना हदीस, अब अमला है कि एक दफा कह दिया, कभी दो दफा कह दिया, लेकिन उससे ज्यादा कभी आपने कही नहीं बात। जैसे हम कहते हैं, जैसे आज मजलिस में ये बात मैंने आपसे कह दी, किसी मजलिस में और बात हो गई, तो आप सरसम उन्हें कि आपका अंदाज मैंने देखा था, मैं आप बातें सुनता था बड़ी गौर से, कभी ऐसा हुआ नहीं कि आपने एक मजलिस में दो बातें दो दफा कह दी। हाँ फरमाते हैं, एक बात ऐसी थी, एक बात मैंने नोट की इब्न उमर रहमते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात बहुत ही दफा कही, और जहां तक मुझे अंदाजा है कि 7 दफा तो जरूर ही कही आपने। क्या हदीस का अंदाज है, क्या बात हो गई, सुभान अल्लाह, कि कभी कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रिपीट की ही नहीं, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में की तो एक दफा ही दो दफा, लेकिन एक बात मैंने जो नोट की वैसी थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी दफा की, और जहां तक मुझे याद है 7 दफा तो जरूर की। क्या बात थी? कहते हैं आपसे सुना एक वाक्य सुनाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते थे कि इसराइल में एक कुफ्र नाम एक शख्स था, नाम भी बताया कुफ्र, तो बहुत ही अयाश, बहुत ही बदमाश, पल्ले दर्जे का, हर ऐप पता ही नहीं निकी का उसको होती क्या है। तो उसने क्या काम किया, एक दफा एक औरत थी मोहल्ले की, तो बस उसका दिल आ गया, उसने सौदा कर लिया 60 रियाल में या 60 रियाल में 60 रियाल, चल तू ये ले मैं तुझसे बुरा काम करूंगा। औरत मान गई। अब वो 60 रियाल में औरत को लेके आ गया, रियाल उसने उसको पकड़ा दिए या जो दिनार थे, और वो बुरी हरकत करने का तैयार हो गया। अब जब वो बुरी हरकत करने के लिए तैयार हुआ, उस पोजीशन में गया, तो औरत वो जो थी कांपने लगी और रोने लगी। जब कांपने लगी रोने लगी तो फिर उस आदमी ने पूछा कि भाई क्यों रो रही है तू, बात तुम्हारी तय हुई थी। कहते तू मेरी बात पे अगर यकीन करेगा तो जिंदगी में मैंने ये काम नहीं किया, ये बदकारी मैंने कभी नहीं की जिंदगी में, बहुत मजबूरी हालत थी कि मैं इस हालत में पहुंची हूं, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि क्या मामला है मेरे साथ हुआ, मैं ऐसी औरत थी नहीं, मैं खराब थी। उस बदकार आदमी ने जब ये सुना तो हट गया। हटने के बाद उसको कहता है कि 60 रियाल जो तुमने दिनार मैंने दिए वो तेरे, और एक तरफ बैठ के कहने लगा कि आज के बाद मैं ये बुराई जिंदगी भर कभी नहीं करूंगा। क्या अमल किया उसने? सिजदा किया, नमाज पढ़ी, वो सदका दिया, नहीं क्या कहा, बुराई नहीं करूंगा, ये बुराई मैं नहीं करूंगा। बस क्या हुआ, रात हुई इंतकाल हो गया, हदीस है रात हुई इंतकाल हो गया, मर गया, तो सुबह उसके दरवाजे पर अल्लाह सुबहान तआला ने तख्ती रख दी, लिखित के टांग दी कि अल्लाह सुबहान तआला ने कुफ्र को जन्नत में पहुंचा दिया। तो मेरे भाई नेकी की तरफ हम भागते हैं, तहज्जुद हम पढ़ते हैं, इशराक हम पढ़ते हैं, शास हम पढ़ते हैं, कितने बड़े बड़े भारी काम करते हैं, कोई घंटी नहीं। लेकिन जिस वक्त बंदा कोई अल्लाह से वादा करता है कि मैं ये बुराई नहीं करूंगा, अल्लाह फौरन उसको कबूल कर लेता है। तो ये अमल क्यों ना करे आदमी, हम में कितनी बुराई होंगी मुझे बताएं आप, होंगी, लेकिन भागते उस तरफ है, भागते ज्यादा अटेंशन, हालांकि कीमती चीज ये है, इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, इसकी तवज्जो नहीं कि अल्लाह ताला के यहां ये एक अमल जो है तमाम अमलों पे बाहर है। कोई इंसान अगर बुराई को तर्क करता है, बुराई को तर्क करता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम अमलों से ऊपर बढ़ जाती है चीज। अब हम अपनी जिंदगी को देखें दोस्तों, उम्र हम करते हैं, हज हम करते हैं, नमाजें हम पढ़ते हैं, सजदे हम करते हैं, सदकात हम देते हैं, मसाजिदें हम बनाते हैं, तरावीह हम पढ़ते हैं, कितने कितने अमल हम करते हैं, करते हैं ना। लेकिन कभी हमने सोचा कि यार इस आदमी को गाली नहीं देनी चाहिए, इस आदमी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, इसका हक नहीं मानना चाहिए, इसको मैंने बुरा कहा है इसको बुरा नहीं करना चाहिए। ये काम करने के बाद ऐसा भूल जाते हैं जैसे हमने किया ही नहीं, जहन में नहीं आता कभी। और जब अल्लाह का अजाब उन कामों की वजह से आता है तो हम अपने अमलों को देखते हैं, यार मैं तो अभी उमरा करके आया हूं, मैंने तो यार इतने आदमी उमरा कराया था, यार मैंने तो अभी इस मस्जिद में इतने पैसे दिए हैं, मैंने इस मस्जिद को तामील कराया था, मैं तो यार इतना अपनी नेक को देख, ये मेरे साथ कैसे हो गया। और उसको क्या पता कि अल्लाह की किताब में तेरा एक वो फेल कि तूने एक इंसान को हकालत से देखा, बुराई थी ना, तूने एक आदमी को हकालत से देखा, उसको बुरा कहा, किसी के बारे में तुमने तकबूर कहा, या तेरी जबान से ऐसा लफ्ज निकल गया, ये क्या है यार, वाश आदमी है, उनको देखो या उनकी औलादों को देखो, फना देखो, बस अल्लाह ताला उसको पकड़ लेते हैं। वो अपने अपने हिसाब में लगा होता है कि मैं तो बड़े नेक कर रहा हूं, मैंने तो कुछ अमल ही नहीं किया, लेकिन उसका जब अजाब उस पर आता है तो अल्लाह की पकड़ होती है उस पर, तो बड़ी गिरफ्त हो जाती है, उसको पता भी नहीं आता। ये तज़किए की मजलिस है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे भाइयों, आप जिस लाइन पे चले हैं, उस सालिक की लाइन है जिसमें बहुत इबादत अल्हम्दुलिल्लाह आप करते हैं, जिक्र अस्कार आप करते हैं, लेकिन इसकी हैसियत जरी होगी। उसकी मिसाल हमारी तो ऐसे है, कैसे दो काश्तकार थे, और एक काश्तकार जो था, किसान जो था, उसका भी बाग था, बेहतरीन फर्टाइल डालता था और उसमें बीज बेहतरीन डालता था, उम्दा किस्म के चीजें डालता था जो भी होती उगाने के लिए। और दूसरा आदमी जो था वो उसमें सीधा साधा बीज डालता था, और जनाब सीधा साधे पौधे होते थे उसके, और कोई इतनी कीमती चीज फर्टाइल कीमती नहीं होती थी। लेकिन जब एंड होता था खेती का, तो होता क्या था कि उसकी जो खेती थी, जो बहुत ही ज्यादा चीजें डालता था उसमें, और बीज डालता था, सब कुछ डालता था, पानी खूब देता था, एंड में क्या होता था कि उसके बिल्कुल फक्कड़ होते थे, फल निकलता ना जायका, कुछ मरा हुआ, कुछ टूटा हुआ, कुछ 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 कोई भी इतना काम। और वो जो आदमी था उसकी खेती में जायका जायका होता था, फल फूल निकलते थे, बहुत उसका था चीजें बिकती भी थी और खूब फल फूल होते थे, लगता था फल। तो फिर उसने एक दिन से पूछा कि भाई ये क्या बात है कि तू जो है मेरे मुकाबले में तेरी जो सब चीजें कम है दर्जे में, मैं इतना चीजें अच्छी आलत डालता हूं, तेरा एक बाग कैसे गिरता है। उसने कहा तू मुझमें और मुझमें तुझमें एक फर्क है। वो क्या? कहते मैं बीजों पर ज्यादा जोर नहीं देता, मैं ज्यादा कीमती फर्टाइल पर जोर नहीं देता, बल्कि मैं इस चीज पर ज्यादा जोर देता हूं कि जो कीड़े हैं, जिसको कहते हैं ना कीड़े कुछ दवा नहीं होती, जो उसको ज्यादा इस्तेमाल करता हूं कि कीड़े ना पैदा हो, इंसेक्ट्स पैदा ना हो, क्योंकि वो पैदा होंगे तो फल को खा जाएंगे, मेरी तवज्जो उस तरफ ज्यादा होती है। कहता है ये काम तो मैं नहीं करता, मैं तो बीज ज्यादा मेहनत डालता हूं और मैं वो दवा नहीं डालता जिससे कीड़े मर जाते हैं। तो फर्क से यही है। तो मेरे भाई, इसकी बड़ी प्यारी मिसाल है वजूद ये कि अमल तो हम बहुत करते हैं, अमल तो बहुत करते हैं, लेकिन अमल तो जब ही अमल होगा कि जब हम उनको कीड़ों से बचाएंगे, गुनाहों से अपने अमल को बचाएंगे। अगर हमने अपनी खेती को बहुत बड़े बड़े अमलों से सजा लिया, तहज्जुदों से सजा लिया, सदकात से, लेकिन उसके साथ बुराइयां मौजूद हैं सारी, गुनाह इसी तरह मौजूद हैं, तो वो तो इसी तरह है कि आपकी खेती को खा गए, खत्म कर दिया, तो आखिर तो मिलना ही कुछ नहीं। बात समझ नहीं? असल चीज क्या है, कितनी बुलंद चीज है, देखें एक अमल अल्लाह के नजदीक इंसान पूरी तहज्जुदों से बढ़ जाता है, पूरी आपकी नवाफिल अबादों से बढ़ जाएगा। आप एक गुनाह से तौबा करते हैं, अल्लाह ताला आज के बाद अपनी निगाहों को बचाऊंगा, मैं कभी ऐसी होती तौबा कर ली। एक और वाक सुना, तुम हदीस सुना, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला की हदीस है, ये मुस्नद हदीस में से, कहते एक आदमी था, दो बस्ती थी, एक थी बुराई की बस्ती और एक थी अच्छाई की बस्ती। होते हैं बाज दफा के एक इलाके में बस वो फिर सारे चोर उचक्के सब जो हिसाब वाले लोग होते हैं वो रहना शुरू हो जाते हैं, बदमाश लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, चलो एक ही जगह, और एक जगह नेक आदमी शुरू हो जाते हैं जो बेचारे नेक आदमी हैं। इस तरह दो बस्तियां थी जिसमें नेक ही नेक थे, अच्छे काम करने वाले थे, उसमें एक बुराइयों की बस्ती थी, उसमें बुराई करने वाले लोग थे। उस बुराई करने वाले में से एक शख्स ने कहा कि यार मैं बुराई छोड़ता हूं, मैंने ये काम नहीं करना, नीयत कर ली उसने। अल्लाह ताला तो अंदर से सुनता है सारी बात, ये करके उन्होंने कहा मैं बस्ती छोड़ता हूं, अब मैं इस तरफ रुख ही नहीं करना, अब वो नेक बस्ती की तरफ चलना शुरू हो गया। ये भी हदीस है। और जब चलना शुरू हुआ तो उसका इंतकाल हो गया। अब इंतकाल जो हुआ तो धुन निकला उतरा है, इधर से शैतान आ गया कब्जा करने के लिए उसको, और उधर से कौन आ गया, फरिश्ते आ गए। अब उन दोनों में तकरार शुरू हो गया। ये हदीस है। शैतान कहता है तो मेरा घाक है, तू उसको क्या करे, इस जिंदगी उसको पता ही नहीं नेकी होती क्या चीज है, तू उसको कहां लेके जा रहा है, फरिश्ते से कहा ये तो मेरा परमानेंट घाक था, इसको तो मैंने कभी कुछ करने ही नहीं दिया नेक काम, इसको पता ही कुछ नहीं कि कोई नेक काम था या नहीं है, कुछ नहीं पता इसको। उधर फरिश्ते कह रहे हैं कि नहीं, इसने एक बात तो की थी कि चल रहा था बस्ती की तरफ जा रहा था, दोनों तकरार हो गया। कहता ठीक है अल्लाह ताला से फैसला कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। दरखास्त चली अल्लाह पाक से, अल्लाह ताला ने कहा इसका फैसला ऐसे करो अल्लाह के अल्लाह के पास मौजूद था, अमल उसको आप जानते थे इसने क्या अमल किया। अल्लाह तआला ने कहा ऐसे करो ये देखो कि ये किस बस्ती के करीब है, जिस बस्ती के करीब होगा बस वो उसके साथ फैसला कर दिया जाएगा, अगर ये बुराई की बस्ती के करीब है तो उसको ही धकेल देना, और अच्छा है फिर अच्छा ही मिल जाएगा, फिर उसका नाम मिलेगा। और ये कहने के बाद अल्लाह सुबहाना तला ने एक काम किया कि जब नापने लगे जमीन तो जो नेक बस्ती थी ना उसको उसके करीब कर दिया। अब जब ना पाते एक बालिश जिसमें आता है वो बस्ती से करीब था, फरिश्तों ने उठा लिया उसको, जन्नत में ले गए और जन्नत में पहुंचा दिया। एक दो मिसालें ऐसी मैंने आपको दी हैं कि जिसमें कोई ये नहीं कि भाई उसने एक भी वो नेकी की हो, बस एक नेकी उसने की, उसने कहा कि मैं ये बुरा अमल नहीं करूंगा, अल्लाह को पसंद नहीं। एक देखिए नुकता कितना प्यारा है, अल्लाह कादर मुतली सब कुछ, अगर वो उनको जन्नत में पहुंचाना चाहते सब क्यों ड्रामा करते, फरिश्तों से कहते ले आओ जन्नत पहुंचा दो उसको, मैं कादर जिसको चाहूं जन्नत में ले जाऊं। लेकिन एक ऐसी मिसाल कायम की अल्लाह पाक ने अपनी रहमत की कि देखो मैं इस फेल को कितना महबूब करता हूं और कितना पसंद करता हूं, मैं चाहता हूं इसको ले जाता, आपको क्या पता मैं ले गया जन्नत में, कौन मैं रोकता था, मैं अल्लाह मालिक हूं, खालिक हूं जन्नत का, मैं रब हूं। नहीं, अल्लाह ने एक ऐसी मिसाल पेश की कि देखो मुझे ये अमल कितना महबूब है और कितना पसंद है कि मैं कायनात को चेंज कर देता हूं उस आदमी के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात है, इतना महबूब होगा अल्लाह पाक को ये अमल के, जब आदमी बैठ के कहे कि मैं बुराई नहीं करूंगा एक, तो भाइयो ये सोचने वाली बात है। अपनी इबादत पे घमंड ना करें, अपने मामलात पे घमंड ना करें, अपनी गलतियों को देखो, मालिक हमारा खालिक उसके मियार को देखो कि वो क्या चाहते हैं हमारे से। अल्लाह चाहता है कि कोई मेरा नाफरमानी ना करे, मेरे हुक्म की अधूरी ना करे, वो मालिक है खालिक है, ये नहीं कि छोटा सा एक जर्रा नहीं हिल सकता उसके हुक्म के बगैर, हम दो टांग के इंसान हमारी क्या जरूरत, क्या हम कहें तो छोटा सा ही क्या गलती हुई तो क्या कर ली, ये छोटी बातें हो गए तो क्या हो गया। तो अगर नेक इंसान बनना है और अपने हमने इस अमाल के अपने से, मैं अपने आप से मुखातिब हूं अपनी नमाजों का, अपनी तहज्जुदों का, कितनी मेहनत अल्लाह पाक हमसे करा रहे हैं, हम तो नहीं कर सकते ना, कितनी करा रहे हैं, और उसके साथ हम गुनाह करते रहें, छोटा समझ के करते रहें, हरामकारी करते रहें, माल खाते रहें लोगों का, बुराई करते रहें, लोगों को गाली देते रहें, झूठ बोलते रहें, ये तो छोटा सा झूठ था, झूठ झूठ होते हैं, तब कहां गया अमल। अगर वो एक बार हम कर लें बेशक सारे हमारे पास अमल ही ना हो तो बहान अल्लाह देखें कितना भारी अमल है, कोई नेकी हमारे पास नहीं है लेकिन हम उस बुराई को छोड़ दे, अल्लाह ताला मैं अब ये काम नहीं करूंगा, बड़ी गंदी है, तुझे पसंद नहीं है चीज, मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, जन्नत पहुंच गया कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, दरवाजों पर अल्लाह पाक लिख देते हैं देखें कि मैंने इसको जन्नत में पहुंचा दिया। दोनों मिसालें अजीब हैं, जाहिर की अल्लाह पाक ने किस कदर महबूब कर लेता हूं मैं उस इंसान को, जिसको नहीं कभी जरूरी नहीं है कि यार इबादत गुजार को अल्लाह ताला महबूब बना ले, इतनी जल्दी कहीं मिसाल नहीं मिलती आपको कि बहुत अच्छी नमाज पढ़ता था तो मैं उसको कूल कर लिया, बहुत अच्छा ये करता था, उसमें तो हजारों चीजें देखेंगे अल्लाह पाक, नमाजों में तो हजारों चीजें देखेंगे, इसमें रिया तो नहीं है, दिखावा तो नहीं है, इसके सजदे सही है, इसकी कोई नीयत क्या थी, ये खड़ा किस, हजारों चीजें देखी जाएंगी इस चीज हमारी इबादत पे। लेकिन जहां बुराई का छोड़ना है अल्लाह कहता कुछ भी नहीं देखता उसमें, कुछ भी नहीं देखता उसने कहा बस इसने अपने रब को मान लिया, इसने कहा मेरे रब को पसंद नहीं है तो वह कर ली बस खत्म, बात समझ आ गई। तो हमें इस पर कोशिश करनी चाहिए दोस्त, अल्लाह पाक हम इसकी तौफीक नसीब फरमाए, और ये जिक्र वगैरह जो करते हैं इसीलिए कि अल्लाह हमारे दिल में रोशनी पैदा करे, वो रोशनी से क्या फायदा होगा, जिक्र एक नूर है, जिक्र क्या चीज है, नूर है, लाइट है, और जब तक लाइट ना हो तो वहां क्या होता है, अंधेरा। अगर आप ये लाइट बुझा दें तो यहां क्या होगा, लाइट आ गई तो रोशनी। तो मेरे भाई जिक्र एक नूर है, और दिल एक ऐसी जगह है उसको रोशन किससे किया जा सकता है, वो लाइट कौन है, जिक्र अल्लाह है, अल्लाह खुद कहते हैं। तो जब हम जिक्र ही नहीं करेंगे तो वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, जब वहां अंधेरा है तो उससे हमें क्या पहचान कर सकते हैं कि ये बुराई है ये अच्छाई है, तो फिर हमारा अपना स्टैंडर्ड होगा, जिसको हम अच्छा कर दें अच्छा, जिसको हम बुरा कर दें बुरा, जो चाहे कर लें जो चाहे छोड़ दें, जिसको एक्सेप्ट कर लें जिसको छोड़ना छोड़ दिया, वो तो मियार ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही लाइट जलेगी दिल के अंदर एकदम फर्क नजर आने लगेगा, ये सही है और ये गलत है, जिक्र ये काम करता है, आखिर जाती शऊर आ जाता है इंसान में, नहीं नहीं हिम्मत आ जाती, मैं कर ही सकता हूं, नहीं यार देखो सारी दुनिया कर रही है, ये सारी दुनिया इसलिए कर रही है कि वो अंधेरा है उनके दिल में, मेरे दिल में लाइट जल रही है तो मुझे नजर आ रही है, सांप और बिच्छू मैं नहीं कर सकता। देखो ना अंधेरे में आप तो बिच्छू भी पकड़ लेंगे, सांप को भी पकड़ लेंगे, अजदहा भी पकड़ लेता है अंधेरे में, तो हर चीज पकड़ लेता है, गिरफ्त कर लेता है, जिससे जहां रोशनी जली रोशनी आई सवारी पैदा आप उसमें हाथ डालें, डालेंगे कभी नहीं। इसी तरह दिल का मामला है, जिस वक्त दिल में अंधेरा होता है तो आदमी हर गुनाह कर जाता है, हर गुनाह कर जाता है, अल्लाह की बड़ी बड़ी नाफरमानी कर जाता है, एहसास ही नहीं होता, क्यों अंधेरा है ना, पता ही नहीं उसको क्या हाथ कहां हाथ में मार रहा हूं। जहां उसने अल्लाह का जिक्र शुरू किया तो वहां लाइट आई, लाइट आते उसको नजर आने लगा, वो ये तो इतना खराब है, इतना बुरी चीज है, ये तो बहुत बुरी चीज है, और सब जो नजर आने शुरू होगी तो फिर उनके नजदीक नहीं इंसान जाता। यही मकसद है अल्लाह का जिक्र का, अल्लाह ताला ने जिक्र को जो कहा है कसीरन कसीरा, खूब रोशन करो अपने दिल को जितना कर सकते हो, जितना तुम्हारा दिल रोशन होने होता चला जाएगा, रोशनी बढ़ती चली जाएगी, उसी तरह हमारा एहसास बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हम कहेंगे नहीं ये गलत काम है यार, मैं तो नहीं करता क्योंकि मुझे नजर आ रहा है, मैं तो देख रहा हूं इसके पीछे जहन्नुम की इतनी बड़ी सजाएं हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता भाई, माफी मेरी, भूखा रह लूंगा, प्यासा रह लूंगा, जैसे भी हालात हैं मैं गुजारा कर लूंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा क्योंकि ये डायरेक्ट मुझे जहन्नुम नजर आ रही है, आग नजर आ रहा है। इसी वजह से अल्लाह वाले जो है उनके दिल रोशन होते हैं अल्लाह के जिक्र करने से, तो बुराई की तरफ नहीं जाते। जब भी आप किसी इंसान को देखें गुनाहों की तरफ है, मलामत ना करें, बुराई की तरफ चला गया मलामत ना करें, कोशिश करें कि अल्लाह के जिक्र की तरफ ले आए उसको, पहला सीन है, किसी की मलामत ना करें, डांटे ना, कुछ ना करें, देख रहे हैं अब ये बहुत खराब हो गया बच्चा, ये बहुत खराब हो गया ये आदमी, गलत काम कर रहा है, प्यार मोहब्बत से उसको किसी जिक्र की मजलिस में बिठा दे, जिक्र में आया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, रोशनी जली नहीं, अल्लाह की मोहब्बत आना शुरू हो जाएगी इसके अंदर, ये जिक्र की कितनी तारीफ अल्लाह पाक ने की है सारी। अगर हम किसी अपने भाई से मोहब्बत करते हैं, भाई से मुराद हर मुसलमान भाई एक दूसरे का, देख रहे हैं भाई कोई खराब है, कोई लड़का गलत रास्ते पे जा रहा है, प्यार मोहब्बत उसके यार एक दिन तो चलो हमारे साथ जिक्र में बैठो, आप सब मैं इसी तरह आए हुए हैं, हम भी कोई लेके इस तरह आया था, आपको इस तरह लेके आया था, जम गए ना आप अल्लाह के फजल से, ये नहीं जमे ऐसी होता है। तो आप किसी को देख रहे हैं भाई गंदा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, कोई क्यों करो, कितने आप समझाएंगे उसे नहीं समझना, कुरान खोल रहे हदीस, ये मैं बता रहा हूं आप, आज का जमाना ऐसा है कि कोई आर्गूमेंट नहीं चलती किसी को, आप वास से कुरान से नसीहतों से हदीस से उसमें आर्गूमेंट शुरू हो जाती है, अपनी दलाइल देते हैं आप, अपनी दलाइल देते हैं आप, अपनी दलाइल देंगे उसमें क्या है, एक और टेंशन पैदा हो जाती है, इसका वाहिद एक इलाज है कि ठीक है यार तू बिल्कुल सही कह रहा है, आज चलो जिक्र तो करें ना, इसमें तो हर चीज नहीं है, देख के सच मजा आता है जिक्र में, घसीट के अल्लाह के जिक्र मिले एकदम लाइट चलेगी अल्लाह के फजल से, दो चीजें मिलेंगी अल्लाह वाले की सोहबत और दूसरे जिक्र अल्लाह, असरात आना शुरू होंगे अल्लाह के फजल से। तो ये भी अल्लाह ताला की मखलूक की बहुत बड़ी खिदमत है दोस्तों, बहुत बड़ी खिदमत है कि हम इर्द गिर्द देखें ये माहौल ऐसा है, आजकल इतना गंदा माहौल है कि आप पूछें ना, हम तो मस्जिद में बैठे हैं, आप बाहर निकल के देखें क्या हालात है, तो अल्लाह ताला का हमसे पूछेगा कि तुम भी तबलीग करते, लोगों को दावत देते, बुलाते, हमदर्दी करते, खुद अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तुम देखें ये आदमी क्या किस तरफ जा रहा है, बुरे रास्ते पर चला गया, ईमान इसका खत्म हो रहा है, फौरन कहें आए फला मस्जिद में जिक्र होता है, और ये अल्लाह का करम है हर मस्जिद में शुरू करा दी, अभी वहां जिक्र होता है, मैं तो वहां रहता हूँ, चलो वहां भी होता है भाई, एक दफा आके देख लो फिर ना आना, तो इसमें क्या अर्ज है, आओ ये मैं तुम्हें ले जाता हूँ, तो अल्लाह को मंजूर होगा उसके दिल में, अल्लाह पाके चलो उसको आ गया, आपका भी काम बनेगा, उस इंसान का भी काम बन जाता है। लेकिन आज के दौर में मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी को तब्दील करना चाहते हैं, अगर किसी को तब्दील करना चाहते हैं, तो वाहिद एक इलाज यह है अल्लाह का जिक्र, बस याद है, जैसे मैंने आज आपके बात की है कि बुराई को छोड़ो, आप बुराई को छोड़ना चाहते हैं तो कसरत जिक्र करें, बस अगर हमने बुराई नहीं छोड़ी तो मैं आपको हदीस बता दी है, फिर फायदा कुछ नहीं है, ना जिक्र का फायदा है, ना तहज्जुद का फायदा है, ना अमालों का फायदा है, ना हजों का फायदा है, ना उम्रों का फायदा है, चले जाओ वाफ करके आ जाओ, हज करके आ जाओ, लेकिन फायदे से कुछ नहीं, फायदा जब है जब अल्लाह को राजी करके इंसान ये काम करे, एक तहज्जुद तो जो अल्लाह को नाराज करके इंसान पढ़ रहा है, ठीक है ना, किसी के साथ दिन में हम किसी का जुल्म किया है, किसी का पैसा खाया है, झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, बहुत से हराम कार्य हम करते हैं जो हमने जायज बनाई हुई है, सूद हमने हराम किया, सब चीज हमने हलाल की है अपनी तरफ, सारी चीजें जो अल्लाह ने मना की है सब हलाल है हमारे लिए। कभी ना उस पर हमने नहीं सोचा कि जाके हम इसके बारे में पूरी तहकीक करें कि भैया ये अच्छी सही भी है चीज या नहीं है, नहीं वो क्या अजीब चलता है, सब चलता है। तो ऐसे हालत में अल्लाह को नाराज करके आदमी तहज्जुद पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है? सोचिए, दो तहज्जुद है, एक अल्लाह को राजी करके पढ़े और एक अल्लाह को नाराज करके पढ़े, दोनों में आपको फर्क नजर आ जाएगा, दोनों में फर्क नजर आ जाएगा इबादत के अंदर। तो मैं कहने का अर्ज था कि हमें इस तरफ ज्यादा जोर देना चाहिए, हम इस समझ पर कि हम बुराइयों को तर्क करें, अपनी बुराइयों को ढूंढें, छुपाएं ना, ऐसा कि हर वक्त अपने आप को जैसे शीशे में आदमी देखता है ना, एक शीशा समझे अपने जमीर को, जमीर को सामने रखें कि यार तुम तो ये काम किया, शर्म नहीं आते, तू जिक्र कर रहा है तो शर्म नहीं आते, तू नमाज पे खड़ा है अल्लाह के सामने, तू तो भी ये काम करके तूने भी झूठ बोला है, तूने भी वहां गलत साइन किए हैं, तू तभी गलत काम करके आए, तू तो अभी फलान साहब गाली दे के आए, तूने अभी तो उसका दिल तोड़ा है, झंझोड़े अपने आप झंझोड़े, और काश जमान से निकल जाए यार अब मैं बुराई नहीं करूंगा, एकदम काम बन जाएगा। दो हदीस सुनाई आपको। तो आज का मौजू ये था कलम दिला कि एक नया सवाब का रास्ता है, बहुत बड़ा सवाब है, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए और आप हजरत को तौफीक। अब चलते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं।